सप्तम उल्लास काव्य दोषों का निरूपण। जैन जैसे दोष की कालिमा किसी व्यक्ति उत्कर्ष में विधातक होती है, उसी प्रकार काव्य दोष भी काव्यार्थ के मुख्य प्रतीति के उत्कर्ष के विघातक होते हैं। त्याद वपुः सुंदरम मेष्वी त्रेणई केन दुर्भगम। किसी कामिनी का शरीर चाहे कितना ही सुंदर क्यों न हो, परंतु उसके अंग में यदि कुष्ठ का छोटा सा भी दाग है तो वह सौंदर्य सदा के लिए निरर्थक हो जाता है। कविता कामिनी का भी यही हाल है। कितनी भी सुंदर कविता क्यों न हो, यदि थोड़ी भी व्याकरण संबंधी त्रुटि दिखाई देती है तो वह सारी कविता फीकी मालूम पड़ती है। एक भी कर्ण कटु शब्द श्रोता को उद्विग्न कर देता है, इसलिए कवि और लेखक को हमेशा इन काव्यगत दोषों से बचना चाहिए। अतः दोषों के परिहार के लिए सर्वप्रथम दोषों का ज्ञान आवश्यक है। दोष सामान्य का लक्षण काव्य प्रकाश में इस प्रकार किया है। मुख्यार्थ द्वितीय दोष मुख्य स्यार्थस्य द्वितीय प्रकर्षो यस्मात्स दोष इत्यर्थ अथवा मुख्यार्थो हन्यते अपकृष्यते नेनेति करण साधनो द्वितीय शब्द एवंच मुख्यार्थापकर्षत्वं दोषत्वमिति दोष सामान्य लक्षणम् अर्थात मुख्यार्थ का अपकर्ष जिससे होता है उसको दोष कहते हैं। मुख्यार्थ का मतलब यहाँ रस है, रसस्य मुख्य। इसलिए मुख्यार्थ विषयक रस विषयणी जो प्रतीति उस प्रतीति के अपकर्षक कारण को दोष कहते हैं। रस का आश्रय होने से वाच्य को भी मुख्यार्थ कहते हैं, इसलिए रस के साथ चमत्कारी वाच्य के अपकर्षक को भी दोष कहते हैं। यह अर्थ दोष है। तदाश्रयाद वाच्य अर्थ रस का आश्रय है, इसलिए वह दोष अर्थगत भी होता है। उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्यासेन तेष्वपि सः शब्दादि रस तथा वाच्य दोनों के बोधन में उपकारक होते हैं, इसलिए इनमें भी यह दोष रहता है। अतः दोष पांच प्रकार का होता है। एक पद दोष, दो प्रदांश दोष, तीन वाक्य दोष, चार अर्थ दोष और पांच रस दोष। विस्तार के भय से समग्र दोषों का वर्णन लक्षण उदाहरण द्वारा इनका विवेचन यहाँ असंभव है। अतः मुख्य मुख्य काव्य दोषों का दिग्दर्शन कराया जाता है। पद दोष एक श्रुति कटु दोष, कठोर व कर्ण कटु वर्णों से जो पद रस का अपकर्ष करे उसे श्रुति कटु दोष कहते हैं। उदाहरण कार्तार्थ्यम लभते कदा, यहाँ यह कृतार्थस्य भाव कार्ताभ्यम यह शब्द कर्ण कटु है। प्रायः रेफ घटित संयुक्त वर्ण कविता के माधुर्य का अपहरण करते हैं। अतएव किसी विद्वान ने कहा भी है स्वायत्ते शब्द प्रयोगे कर्णोपतापक प्रयोगेण श्रोतु रुद्वेगो रसापकर्षाय भवति, जैसे हिंदी का यह पद्यांश पर ज्ञान विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। यहाँ विषयोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता इन पदों के अक्षरों का योग संयोग व रेफ के कारण कानों के लिए कर्ण कटु है। दो च्युत संस्कृति दोष, व्याकरण के संस्कार से हीन पद च्युत संस्कृति दोष से दुष्ट होता है। उदाहरण दीनं त्वामनुनाथते कुछ युगम पत्रावृत्तम मा वृथा कृथा। याचनार्थक नाथ धातु परस्मै पदी है, आशीषी नाथ। इस सूत्र से केवल आशी अर्थ में ही आत्मनेपद का विधान है, अतः अनुनाथते यह पद च्युत संस्कृति दोष से दुष्ट है। तीन अप्रयुक्त दोष, कोशादि में उस अर्थ में होने पर भी कवियों के द्वारा उस अर्थ में प्रयुक्त न हो, जैसे दैवतः शब्द कोश की दृष्टि से उभय लिंग पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग में पठित है, पर कवियों के द्वारा इसका प्रयोग पुल्लिंग में नहीं किया जाता है, अतः दैवतः यह पद अप्रयुक्त दोष से दूषित है। चार निहितार्थ दोष, दो अर्थ वाले पद को अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग करना निहितार्थ दोष कहलाता है, जैसे शोणित पद का रुधिर रूप अर्थ ही प्रसिद्ध है न कि रक्त या लाल रंग, अतः शोणित पद का लाल रंग के अर्थ में प्रयोग दोष ही है। पाँच अनुचित अर्थ, अनुचित अर्थ वाले पद। छ निरर्थक, जिसका पाद पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाए। सात अवाचक, कभी विवक्षित अर्थ का जो वाचक न हो, जैसे भारवी के अवध्य को पस्या इत्यादि पद में जंतु पद का अदाता अर्थ में प्रयोग किया, परंतु यह पद इस अर्थ का वाचक नहीं है। अपितु अमर्ष शून्य व्यक्ति की तुच्छता का सूचक है। 8. अश्लील दोष तीन प्रकार का होता है, व्रीड़ा, जुगुप्सा तथा अमंगल के भेद से। काव्य में हमेशा श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, व्रीड़ा व्यंजक या जुगुप्सा और अमंगल व्यंजक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 9. ग्राम्य दोष यह भी एक प्रकार का अशिष्ट या अशिक्षित प्रयुक्त दोष है, काव्य में नागरिक भाषा का ही अधिक प्रयोग होना चाहिए। 10. संदिग्ध दोष ऐसे पद या वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे उसके अर्थ में या प्रतिपद में संदेह हो, यह दोष पद वाक्य तथा अर्थगत है। 11. अविमृष्ट विधेयांश वाक्य में विधेय अंश की प्रधानता होती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि विधेय अंश का मुख्य रूप से प्रतिपादन नहीं होता है, तब एक गंभीर दोष उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम है अविमृष्ट विधेयांश और यत् दो नित्य संबंध। इस नियमानुसार यत् पद यदि उद्देश्य हो तो बाद में तद पद से उसका विधान करना चाहिए, ऐसा न यदि उद्देश्य हो तो बाद में तद पद से उसका विधान करना चाहिए, ऐसा न करने से दोष होता है, जैसा कि काव्य प्रकाश की वामनी टीका में लिखा है। इदम् अन्योदेश विधेय भाव विषये अवगन्तव्यम् यत् शब्द प्रतिपाद्यं सिद्धत्वेन प्रतीयमानम् अनुवाद्यम् उद्देश्यम् तदादि शब्द प्रतिपाद्यम् उद्देश्य संबंधितया अपूर्व बोध विषयी भूतम् विधेयम् यथा यः क्रियावान् स पंडितः इत्यादौ क्रियावन्तमुद्दिश्या भेदेन पंडितः स्वरूप संबंधेन पंडितत्वं वा विधीयते। जिसे हमने कल बुलाया था वही राम अब आया है, इस वाक्य में जिसे तथा वही का प्रयोग ठीक हुआ है। यदि यत और तत शब्द को पास रख दिया जाए तो वह विधेय अंश की ठीक ठीक प्रतीति नहीं करा सकता है, समास के अंदर आ जाने से किसी भी पद का प्राधान्य लुप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में विधेय अंश को समास के भीतर प्रविष्ट कर देना नितांत अनुचित है। उदाहरण, पार्वती के समक्ष यह शिवजी का वर्णन है, बपु विरूपाक्षम लक्ष्य तन्मयता अर्थात शरीर विरूप आँख वाला है तथा अदृष्ट जन्म भाव वर्तमान है। विवक्षित अर्थ है कि शिवजी का जन्म अलक्षित है, परंतु समाज के भीतर रख देने से उसका जोड़ चला गया और प्राधान्य नष्ट हो गया, यह अनुचित है। वाक्य दोष ऊपर जिन प्रधान पद दोषों का उल्लेख किया गया है इसमें से कतिपय दोष पदांश में भी विद्यमान रहते हैं, प्रायः समस्त पद दोष वाक्यों में भी रहते हैं, परंतु इनके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट वाक्य दोष भी होते हैं जिनकी स्थिति केवल वाक्य में होती है। 1. प्रतिकूल वर्णता जहाँ वर्ण प्रकृति रस के पोषक नहीं होते वहाँ प्रतिकूल वर्णता दोष होता है, जैसे श्रृंगार रस में अकुंडोत्कंठ या पूर्णमा कंठम कलकंठी माम इत्यादि पद में कवि ने नेट वर्ग का प्रयोग किया है, जबकि ट वर्ग कवि ने ट वर्ग का प्रयोग किया है, ट वर्ग श्रृंगार रस का परिपंथी है। 2. न्यून पदता जहाँ पदों की कमी हो वहाँ न्यून पदता नामक दोष होता है, जैसे निपतिहारे खड़गते प्रकट भयोजस फूल, हे राजन तुम्हारे तलवार से यश रूपी फूल प्रकट हुआ है। जहाँ यश को फूल कहा गया है अतः खड़ग को लता कहना चाहिए था, लता पद की कमी होने से न्यून पदता दोष है। 3. अधिक पदता अभिष्ट अर्थ से अधिक पद हो जाने से अधिक पदता दोष होता है, जैसे नियम तो यह है कि जितना अर्थ हो उतना ही शब्द प्रयोग भी होना चाहिए, जैसे दसह तिहारे शत्रु को खड़गलता अहिराज, तुम्हारी तलवार लता रूपी सर्प शत्रुओं को डस रही है। यहाँ लता पद बिना किसी प्रयोजन के रखा गया है अतः अधिक पदता दोष है। 4. अभवन्मत योग वाक्य में अभिमत अर्थात इष्ट संबंध का न होना, वाक्य में शब्दों का परस्पर संबंध होना नितांत आवश्यक है, परंतु कभी कभी यह अभीष्ट संबंध नहीं बनता। गुणानांच परार्थत्वाद संबंध समस्वात स्यात् अप्रधान प्रधान के लिए होता है, दो या अधिक अप्रधानों का आपस में संबंध नहीं होता। मीमांसा के इस नियम के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त अवान्तर पदों का संबंध मुख्य वाक्य से ही होना चाहिए, जैसे विद्यालय के जो अध्यक्ष गणित विद्या में पारंगत हैं तथा जिनके ऊपर इस नगर को पूरा अभिमान है आज उन्हीं की अभ्यर्थना है। यहाँ आरंभ में दो अवान्तर वाक्य हैं तथा अंत में है मुख्य वाक्य, इन तीनों वाक्यों में अध्यक्ष पद का संबंध अभिष्ट है, परंतु उसे प्रथम अवान्तर वाक्य में ही अंतर्निविष्ट होने के कारण अभिमत संबंध बनता नहीं है, अर्थात उसका संबंध दो अन्य वाक्यों के साथ सिद्ध नहीं होता है। 5. कथित पदता, बार बार एक पद का प्रयोग करना, यह दोष कवि के शब्द दारिद्र को प्रकट करता है। उदाहरण, रतिलीला श्रमम भिन्ते सलिल मनिलो वहन, रतिलीला भ्रम को हरत लीला युत चली पौन। यहाँ लीला शब्द का प्रयोग दो बार किया है। 6. भग्न पक्रमता, निबंध अथवा कविता जिस क्रम से प्रारंभ की जाए उसी क्रम या तत्संबंध वाक्यों को उसी क्रम में समाप्त करना चाहिए, ऐसा जहाँ नहीं किया जाए वहाँ यह दोष होता है। उदाहरण, नाथे निशाया नियते नियोगा दस्तम गते हंत निशापी आता, दैवश निशानायक चंद के अस्त हो जाने पर निशा भी चली गई। यहाँ प्रारंभ गम धातु से अस्तंगते कहकर याता या धातु से उपसंहार किया, अतः यह प्रक्रम भंग है। गता निशापी यह पाठ उचित था। यहाँ एक ही पद दो बार प्रयोग करने से कथित पदता दोष की शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह पुनरुक्त या कथित पदता दोष तो उद्देश्य प्रति निर्देश से भिन्न स्थलों में होता है। जहाँ उद्देश्य प्रति निर्देश भाव हो वहाँ तो पदांतर से प्रतिपादित वह अर्थ प्रकृत प्रतीति का स्थगन कर देता है। उद्देश्य प्रति निर्देश का उदाहरण, उदेति सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता, उदय होत रवि रक्त अरु रक्त ही होवत अस्त, संपत्ति और विपत्ति में सज्जन होत न व्यस्त। अर्थ दोष, अर्थ की रुचिरता के लिए कतिपय नियमों का पालन किया जाता है जिससे अर्थ की स्वच्छता व रुचिरता बनी रहती है। यदि उन नियमों का उल्लंघन किया जाए तो अर्थ में अस्वच्छता आने लगती है। यही अर्थगत अस्वच्छता ही अर्थ दोष है, जिनमें मुख्यतः ये हैं। 1. कष्टार्थता, अर्थ के समझने में जहाँ कष्ट हो, जैसे तौ पर वारो चार मृग चार विहंग फल चार, तुम पर मैं चार पशु निछावर करती हूँ, नयन पर मृग घूंघट पर हय गति पर हाथी तथा कटी पर सिंह, वचन पर कोकिला को ग्रीवा पर कपोत को केश पर मयूर को तथा नासिका पर शुक को, इस प्रकार चार पक्षियों को मैं निछावर करती हूँ और चार फल को भी, दंत पर दाणिम को कुछ पर श्रीफल को अधर पर बिंब फल को तथा कपोल पर मधु को वारती हूँ। स्पष्ट है इसका अर्थ करना अत्यंत कठिन है। 2. व्याहतता, जहाँ किसी वस्तु का महत्व दिखलाकर फिर हीनता दिखलाई जाए या पहले हीनता दिखलाकर फिर महत्व दिखलाया जाए वहाँ व्याहतत्व दोष होता है। जैसे औरन के मनहरन को चंद्र कलादि अनेक, मोहि सुखद दृग चंद्रिका प्रिया वही है एक। यहाँ पूर्वार्ध में चंद्र की निंदा की और उत्तरार्ध में उसकी चंद्रकला को अपने लिए सुखद माना है। 3. प्रसिद्धि विरुद्ध, कवि समय ख्याति के विरुद्ध अर्थ का जहाँ वर्णन हो, जैसे उपपरिसरम गोदावर्या परित्यज्यता ध्वगाह सरणीम परो मार्गस्तावद् भवद्भिरवेक्ष्यताम्, यही विहितो रक्ता शोकः कयापि हताशया चरण नलिन न्यासो दंचनवांगर कंचुकः भूलिन जयो पथिक तुम तिह सरिता पथ ओर तरणी पदाहत अंकरित नव अशोक उर्ही ओर। पथिक को कोई उस नदी की ओर बढ़ने से रोक रहा है जहाँ के नवीन अशोक वृक्ष तरुणी के पैरों के आघात से अंकुरित हो उठे हैं। यहाँ कवि समय का विरोध है, तरुणी के पैरों की चोट से अशोक खिलता है, अंकुरित नहीं होता, अतः प्रसिद्ध विरुद्धि है। 4. अन्वीकृतत्व, जहाँ अर्थों में नवीनता नहीं लाई गई हो बल्कि अर्थ एक सा हो वहाँ यह दोष होता है। सदा करत नभ गौन रवि सदा चलत है पौन, सदा धरत भुवि शेष सिर धीर सदा रहे मौन। चारों चरणों में सदा के प्रयोग से अर्थ में नवीनता नहीं आई है, अतः यहाँ अनवीकृत दोष है। 5. साकांक्षता, जिस अर्थ की पूर्ति होने में कुछ शब्दों की आकांक्षा बनी रहती है वह यह दोष होता है। परम विरागी चित्तनित पुनि देवन को काम जननी रुचि पुनि पितु वचन क्यों तजी है वन राम। रामचंद्र के चित्त तो स्वयं परम वैराग्य युक्त है, फिर देवताओं का कार्य भी करना है। जननी कह के की इच्छा और पिता दशरथ का वचन ठहरा, ऐसी स्थिति में राम वन क्यों छोड़ेंगे। अभिप्राय यह है कि वन का जाना क्यों छोड़ेंगे, इस दोहे में तजिए की जगह जाए इस पद की आकांक्षा है, तब क्यों न जाए वन राम, ऐसा वाक्य होगा। प्रकाशित विरुद्धता, जहाँ किसी विरुद्ध अर्थ का प्रकाशन हो वहाँ यह दोष होता है। कुमारस्य नराधि शह श्रियम समधि गच्छतु, राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हो निपृत नृप तव ज्येष्ठ कुमार। हे राजन, आपका ज्येष्ठ कुमार राजलक्ष्मी को प्राप्त करे, इस वाक्य में राजा के मरने का अर्थ प्रकाशित होता है, क्योंकि जब राजा का देहांत होगा तब ज्येष्ठ कुमार राजलक्ष्मी को प्राप्त करेगा, अतः प्रकाशित अर्थ से विरुद्ध अर्थ के प्रकाशन होने से यह दोष है। रस दोष, रस दोष के काव्य का मुख्य दोष है। रसोन्मीलन की प्रक्रिया में काव्य शास्त्र के आचार्यों ने कतिपय आधारभूत नियमों का निर्देश किया है, जिनके अनुपालन से काव्य सरस सुंदर तथा सहृदयावर्जक होता है, और इन नियमों का तिरस्कार करने से काव्य नितांत दुष्ट तथा उपहास्यास्पद होता है, अतः आधारभूत इन नियमों का अनुशीलन अपेक्षित है। व्यभिचारी रसस्थायी भावनाम शब्द वाच्यता दोषाय भवतीत्यर्थ। रस सर्वदा व्यंजना वृत्ति के द्वारा उन्मिलित होता है, अविधा के द्वारा उसका प्रकाशन कथम अपि नहीं हो सकता है। यही नियम स्थायी भाव तथा व्यभिचारी भाव के लिए भी है। इस नियम का उल्लंघन करने से स्वशब्द वाच्यता नामक रस का उदय होता है, यथा तामुद वीक्ष कुरंगाक्षी रसो न कोप्य जायत इत्यादि। श्रृंगार रस के प्रकरण में रस को रस शब्द से अभिहित कर देने से स्वशब्द वाच्यता दोष है। उस योद्धा को देखकर हमारे हृदय में वीर रस उमड़ पड़ा। इस वाक्य में वीर रस स्वशब्द वाच्य होने से रस की सत्ता नितांत अनुचित है, किंतु यहाँ वीर रस की अभिव्यक्ति उसके विभाव व अनुभवों के द्वारा ही होनी चाहिए। दो, कष्ट कल्पनाया व्यक्तिर अनुभाव विभावयोः। किसी पद्य में अनुभव तथा विभाव का उन्मिलन सरल स्वाभाविक ढंग से होना चाहिए। यदि इनकी अभिव्यक्ति कष्ट कल्पना से करनी पड़े तो रस दोष माना जाता है, यथा परिहरति रति मतिम लुनीते इत्यादि पद्य में वर्णित नायिका की बेचैनी आदि अनुभव न केवल श्रृंगार रस में अपितु करुण रस में या भयानक विभत्स आदि रसों में भी पाए जाते हैं, अतः कामनी रूप आलम्बन विभाव यहाँ कठिनाई से प्रतीत होता है। तीन, प्रतिकूल विभावादि ग्रह। विरोधी रस के विभावादि का ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे श्रृंगार रस के प्रसंग में प्रकृति के प्रतिकूल शांत रस के विभाव का वर्णन करना, न मुग्धे प्रत्येतुं प्रभवति गतः कालहरणः इत्यादि। चार, पुनः पुनः दीप्तिः। पुनः पुनः उस रस की दीप्ति दोष माना जाता है, जैसे कुमार संभव में रति विलाप के समय करुण की बार बार दीप्ति अनुचित है। पांच, अकांडे प्रथन छेदौ। अचानक न तो रस का प्रसार करना चाहिए और न प्रासंगिक रस का सहसा उच्छेद ही करना चाहिए। छह, अंगस्याप्यति विस्तृतिः। अंगे मुख्य रस का ही काव्य में विशेष वर्णन उचित है, अंग का अत्यंत विस्तार कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से अंगाति विस्तृति नामक रस दोष होता है। सात, अंगिनोननुसंधानम। काव्य या नाटक में अंगी पदार्थ नायक का ही वर्णन तथा अनुसंधान सदा आवश्यक रहता है, उसका तिरस्कार कर उसे बिल्कुल भुला देना नितांत अनुचित है। आठ, प्रकृति नाम विपर्ययः। नाटक में चित्रित पात्रों के कर्म तथा व्यवसाय उनके स्वरूप के अनुसार ही होना चाहिए। प्रकृति अर्थात पात्र तीन प्रकार के होते हैं, दिव्य स्वर्गीय देव अप्सरा आदि, दो अदिव्य पृथ्वीचारी जीव मर्त्यलोकस्य, तीन दिव्यादिव्य दोनों गुणों से मिश्रित पात्र। इनके स्वरूपों के अनुसार ही इनके कर्म व व्यवहार का काव्य या नाटक में चित्रण करना कवि का परम धर्म है, तभी तो दर्शकों के मन में इनका यथार्थ प्रभाव पड़ता है, अन्यथा तो प्रकृति विपर्य नामक दोष होता है। काव्य के दोषों में रस दोष ही अंतरंग दोष माना गया है, अन्य दोष तदपेक्षा बहिरंग है। दोषों का विभाजन आचार्यों ने इस प्रकार भी किया है, कुछ दोष नित्य होते हैं और कुछ अनित्य। एक नित्य दोष जो हमेशा दोष ही बने रहते हैं वे नित्य दोष कहलाते हैं, जैसे च्युत संस्कृत इत्यादि। दो अनित्य दोष जो किसी अवस्था विशेष में दोषत्व को छोड़कर गुण हो जाते हैं वे अनित्य दोष कहलाते हैं, जैसे श्रुति कटुत्व दोष या श्रृंगार रस में ही दोष होगा परंतु वीर विभत्स व रौद्र रस में गुण बन जाता है। इसी तरह अधिक पदता यह भी दोष है और कथित पदता, परंतु भय तथा हर्ष की स्थिति में यह वक्ता के मुख से अधिक पदों का प्रयोग उचित ही है। दोषों का प्रतिप्रसव संचार्यादे विरुद्धस्य बाध्यस्योक्तिर गुणावहा। प्रकृतिरस के विपरीत संचारी भाव अनुभाव तथा विभाव आदि का बाध्यत्वेन कथन करना दोष नहीं अपितु गुणाधायक ही है, यथा सत्यम मनोरमा रामाः सत्यम रम्या विभूतयः किन्तु मत्तांगना पांग भंग लोलम ही जीवितम्। यह सच है कि स्त्रियां बड़ी मनोरम होती हैं और यह भी सच है कि संपत्ति भी बड़ी रमणीय होती है, परंतु उस सबके भोग करने का साधन भूतीय जीवन तो मदमत्त स्त्री के कटाक्ष के समान क्षण भंगुर है। इस पद में शांत रस मुख्य है, परंतु मनोरमा रामाओं की चर्चा करके कवि ने श्रृंगार रस के आलम्बन विभाव रूप अंग का उसमें समावेश कर दिया है। फिर भी इन मनोरमाओं की चर्चा से पाठक के हृदय में श्रृंगार रस की अनुभूति नहीं होती है और मत्तांग नापांग रूप श्रृंगार रस का अनुभव भी श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति में समर्थ नहीं है, बल्कि इससे जीवन की क्षण भंगुरता का प्रतिपादन बड़े सुंदर ढंग से हो रहा है। इसलिए विषयों से विमुख होने की शिक्षा इस पद्य से सरलता से मिल जाती है। साथ ही साथ कोरे शांतरस चर्चा में श्रृंगार का पुट भी सौंदर्य ला देता है, इसलिए यहाँ दोष नहीं है। यह ध्वनिकार आनंद वर्धनाचार्य का कथन है। विनयान नोन्मुखी कर्तुम काव्य शोभार्थमेव वा तद विरुद्ध रस स्पर्श तदंगानाम न दुष्यति। परंतु यहाँ काव्य प्रकाशकार का समीक्षण सिद्धांत इस प्रकार है, यहाँ विरोधी रसांग के बाध्यत्वेन कथन में दोष नहीं होता है। यह सिद्धांत जब स्थिर हो चुका है तो उसी से यहाँ काम चल जाएगा। फिर मतांग नापांग रूप अनुभव को उपमान बनाकर जीवन को अस्थिरता को उपमेय रूप में प्रस्तुत किया है, अतः अधिक गुण वाले उपभूत मतांग नापांग की अस्थिरता उपमेय भूत जीवन की अस्थिरता से अधिक है, यह उचित ही है। अतः मतांग नापांग के साथ जीवन की अस्थिरता का उपमान उपमेय भाव तद्वत जीवन की क्षण भंगुरता को प्रस्तुत करते हुए शांत रस को ही पुष्ट कर रहा है, श्रृंगार रस को नहीं। इसलिए उक्त स्थल में विरोध परिहार के लिए किसी नए नियम की आवश्यकता नहीं है। काव्य प्रकाश में दोष दर्शन नामक सप्तम उल्लास समाप्त।